अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद का विचार प्रवचन सत्र में हम लोग कर रहे हैं। प्रश्नोपनिषद के द्वितीय प्रश्न के सप्तम मंत्र तक की चर्चा कल तक हुई है। चतुर्थ मंत्र में प्राणादि ने मुख्य प्राण के महात्म्य का बोध वागादि को हुआ, इसलिए वागादियों का जो ये अभिमान था कि हम ही शरीर का विधारण करते हैं, यह निवृत्त हुआ। मुख्य प्राण के वाक्य पर विश्वास हुआ कि मुख्य प्राण ही शरीर का विधारण करता है करके, फिर मुख्य प्राण की स्तुति करने लगे और मुख्य प्राण की स्तुति पंचम मंत्र से प्रारंभ हुई। उसमें बताया गया कि पर्जन्य अग्न्यादि रूप बनकर के दहनादि कार्य जो हो रहे हैं वह यह मुख्य प्राण ही कर रहा है अग्न्यादि का रूप धारण करके, यानी अग्न्यादि रूप मुख्य प्राण ही है का अर्थ है कि मुख्य प्राण सर्वात्मा है, सर्वस्वरूप है और ये संपूर्ण जगत का आश्रय भी मुख्य प्राण ही है। मुख्य प्राण में सर्वात्मत्व गुण है जैसे, ऐसे सर्वाश्रयत्व गुण भी है। इसे अरे तथा रथनाभि के दृष्टांत से समझाया, तो रथनाभि जैसे अरुण की आश्रय भूता है, ऐसे ये सारा श्रद्धादि समस्त जगत ये मुख्य प्राण में ही आश्रित है, मुख्य प्राण उनका आश्रय है। का अर्थ हुआ कि सर्वाश्रयत्व गुण से संपन्न है मुख्य प्राण और वेद के मंत्र जो ऋक् साम यजु हैं और उनसे निर्वर्तित होने वाले यज्ञ हैं और यज्ञ का निर्वर्तन करने वाले क्षत्रिय ब्राह्मण आदि हैं, वे सब के सब प्राण के आश्रित ही हैं। का मतलब सर्वाश्रय प्राण है, ये एक गुण बताया गया छठवें मंत्र में। पांचवें मंत्र में बताया गया था सर्वात्मत्व, छठवें मंत्र में बताया गया सर्वाश्रयत्व गुण और सातवें मंत्र में बताया गया प्राण के ही सर्वात्मत्व को स्पष्ट करते हुए कि ये विराट जो प्रजापति कहलाता है समष्टि स्थूल शरीर ब्रह्मांड कहिए, वह भी कोई आपसे अलग नहीं, आप ही हो क्योंकि आपका ही कार्य है। प्राण समष्टि प्राण उपाधिक चैतन्य ही अपंचकृत पंचमहाभूतों का पंचीकरण करके स्थूल पंचभूतों को तथा फिर स्थूल पंचभूतों के कार्यों का कारण है ना, इसलिए माना जाता है कि सुख ये समष्टि प्राण ने ही सूत्रात्मा ने ही इन प्रजापति का रूप धारण किया है, विराट का रूप धारण किया है, ये बना करके फिर इसमें स्वयं ही प्रविष्ट हुआ है। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत के अनुसार पहले सूक्ष्म समष्टि शरीर को बना करके उसमें प्रवेश किया कारण ब्रह्म ने और फिर कारण ब्रह्म ने कहा यह सूक्ष्म भूत है, सामग्री स्थूल जगत को निर्माण करने के लिए और आगे की सृष्टि स्थूल सृष्टि बना लेना स्वयं, किसे सूत्रात्मा को कहो या हिरण्यगर्भ को कहो, ईश्वर ने कह दिया और स्वयं फिर शांत हो गए, निर्व्यापार हो गए, हिरण्यगर्भ को बना करके और स्थूल सृष्टि बनाने के लिए रॉ मटेरियल के रूप में सूक्ष्म पंचभूत हिरण्यगर्भ को दे करके कह दिया कि आगे के सृष्टि का निर्माण आपको करना है और सूत्रात्मा ने पंचीकरण करके अपंचकृत पंच महाभूतों से पहले स्थूल भूत बनाए, फिर स्थूल भूतों से यह समष्टि स्थूल शरीर रूप ब्रह्मांड बनाया और उसके अंदर विवेष्टि शरीर भी बनाए। और इस ब्रह्मांड में प्रवेश किसने किया? जिसने ब्रह्मांड को बनाया, का मतलब विराट भी वही बना। अपने भोगायतन के रूप में विराट नामक स्थूल समष्टि शरीर को स्वीकार किया। इसलिए मंत्र ने बताया कि प्रजापति जो है यानी विराट है वो आप ही हो, मुख्य प्राण को कहा वागादियों ने। और ये सारे वेष्टि 84 लाख प्रकार की योनियां जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर के अभी तक चल रही है, तो आप ही उन पूर्व पूर्व योनि के पुरुष तथा स्त्री के गर्भ में विचरण करके फिर उत्तर उत्तर तत्तद योनि का शरीर रूप धारण करते हो, यानी वेष्टि रूप में भी आप ही हो। तो इस प्रकार सर्वात्मत्व को और भी स्पष्ट करते हुए सातवें मंत्र में ये कहा कि जिस कारण से फिर सारे स्थूल शरीरों में वागादि इंद्रियों के साथ उन स्थूल शरीर के धारणकर्ता के रूप में आप ही रहते हो, उनमें प्रधान बन करके। इसलिए क्या करते हैं कि जो प्रधान होता है, मुख्य होता है, श्रेष्ठ होता है, बाकी कनिष्ठ जो होते हैं उनकी सेवा करते हैं प्रधान की, मुख्य की। तो सभी वेष्टि शरीरों में प्रधान है यह प्राण ही, इसलिए सभी वेष्टि शरीरस्थ वागादि इंद्रिया जो मुख्य प्राण के दृष्टि में गौण है, वे क्या करते हैं कि मुख्य प्राण की रुचिकर जो वस्तुएं हैं वे उसे ला करके प्रदान करते हैं। यही है उसे भेंट प्रदान करना। ये सातवें मंत्र के उत्तरार्ध में कहा कि तुभ्यं प्राण प्रजा त्विमा बलिम हरन्ति से, हे प्राण यह जो प्रजा है यानी सारे प्राणी हैं वे अपने अपने चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा रूपादि विषयों का ग्रहण करके क्या करते हैं? आपको ही समर्पित करते हैं, रूपादि विषय रूपी भेंट प्रदान करते हैं, का मतलब आप ही भोक्ता हैं। इंद्रिया तो विषयों को अंदर पहुंचा देती है और उन विषयों से रस कौन लेता है? तो आप लेते हो। रसन इंद्रिय ने रस को यानी अन्न को अंदर पहुंचा दिया और उस को खाया किसने? प्राण ने। और फिर खा करके प्राण स्वयं ही संतुष्ट होता है? ऐसा नहीं। प्राण कभी भी अपना कार्य अपने लिए मात्र नहीं करता, इसलिए उसकी महत्ता है। जो बड़े होते हैं वो सबके आवश्यकताओं को देख करके वैसा वैसा जिससे सबकी आवश्यकताएं पूर्ण होगी करते हैं। तो ये मुख्य प्राण भी कार्यकरण संघात में इसलिए मुख्य हुआ, प्रधान हुआ कि वो खाता पीता भी है तो स्वयं ही उसका फल नहीं लेता। खाने पीने से जो अन्न रस होता है और पुष्टि मिलती है, उससे पुष्ट बाकी सब भी होते हैं। यदि खाना पीना बंद हो जाए, प्राण ये खाना पीना न करें, तो आप बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, कुछ लेन देन हाथ से नहीं कर सकते और मन सोच नहीं सकता। जैसे चांदोग्य उपनिषद के छठवें अध्याय में वो श्वेत केतु को 15 दिन भूखा रखा ना, मन के अन्नमयत्व को समझाने के लिए उद्दालक ऋषि ने, और कहा 15 दिन अनशन करके तुम आ जाना मेरे पास। और गुरुकुल में 12 वर्ष रह करके जो वेद अध्ययन करके आए थे, जिस वेद अध्ययन का बड़ा अभिमान था उनको, श्वेत केतु को, फिर पूछा कि ऋग मंत्रों का पाठ करो, यजुओं का पाठ करो, सामवेद में जो ये इस अध्याय में ये मंत्र हैं उसको बोलो, तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था श्वेत केतु 15 दिन कुछ न खाने से। फिर कहा कि तुम अब चले जाना और खूब खाना पीना पुष्ट होकर के फिर आ जाना। फिर पूछा तो जो जो पूछते गए वेद मंत्र उनका ठीक से पाठ करता गया। का अर्थ है कि प्राण का भूख प्यास धर्म है, जैसे श्वासोश्वास प्राण लेता है तो सभी की पुष्टि होती है, उसे वो इस शरीर में ठीक से रह सकते हैं वागादि इंद्रिया। तो ये प्राणनादि क्रियाएं प्राण जैसे समष्टि के लिए करता है, सबके लिए करता है, ऐसे खाने पीने से होने वाली पुष्टि वह भी सबकी होती है, इसलिए उसमें प्राधान्य है, सबके लिए खाता है। तो सभी ला करके दे देते हैं का मतलब प्राण का महत्व है, इसलिए सारा कमाई करके वागादि इंद्रिया बाहरी पदार्थों को प्राण के पास ला करके देते हैं कि उनको प्राण पर इतना विश्वास हो गया है कि प्राण अपने स्वार्थ के लिए कुछ उपयोग में नहीं लाता, जो भी उपयोग करता है वो उसका फल सब हम सब के लिए मिलता है, सभी के लिए प्राण वस्तुएं बांट करके देता है। एक प्रकार से खाता है तो उसका फल सभी के लिए होता है। तो फिर और भी 8वें मंत्र से मुख्य प्राण की ही स्तुति की जा रही है। इस प्रकरण के समाप्ति तक 13वें मंत्र तक प्राण की ही स्तुति आ रही है, वागादि इंद्रियों के द्वारा की गई। और इससे बताए जा रहे हैं उपासना उपयोगी गुण प्राण में। तो 8वां मंत्र है, देवानामसि वन्नीतमः पितृणां प्रथमा स्वधा ऋषीणां चरितं सत्यं अथर्वांगी रसामसि। इसमें वागादि प्राण कह रहे हैं कि आप देवताओं के वन्नीतम हो, असी का अर्थ है हो, और असी का कर्ता होता है त्वम, असी एक क्रियापद है कि त्वम यानि आप ही, असी यानि हो, क्या हो तो देवताओं के वन्नीतम हो, तो देवताओं के वन्नीतम आप ही हो। वन्नीतम शब्द का अर्थ होता है, वन्नी शब्द का अर्थ होता है प्रापक, प्राप्त कराने वाला, पहुंचाने वाला, पोस्टमैन जैसा, कि ये देवताओं को हम जो देते हैं यहां उसको पहुंचाता कौन है, किसके पास देते हैं देवता के उद्देश्य से। तो यज्ञादि में अलग अलग देवताओं के उद्देश्य से अलग अलग जो हवि सामग्री होती है वह देवताओं का भोजन है, डिब्बा है, पैक करते हैं। स्वर्ग में जैसे पहले हमने कई बार कहा ना कि स्मशान भूमि नहीं है कहीं पर भी, या पृथ्वी लोक में तो गांव है तो स्मशान भूमि रहेगी रहेगी, लेकिन वहां स्मशान भूमि जैसे नहीं है ऐसे देवताओं के स्वर्ग में बहुत बड़े बड़े बंगले हैं और वहां सबके अपने अपने मीटिंग रूम, बेडरूम, ध्यान कक्ष आदि सब हैं, लेकिन कहीं पर भी किसी बंगले में कोई रसोई नहीं है, किचन बनता ही नहीं है। यहां वन बेडरूम बनेगा तब भी किचन तो बनाना ही पड़ता है, लेकिन कहीं पर भी आप स्वर्ग में जाकर के खोजो कि इस देवता का किचन कहां होगा, कहीं किचन है ही नहीं, वो बनता ही नहीं है। वहां का जो आर्किटेक्ट है बना करके नक्शा दे देता है, उसमें किचन लेस होता है, किचन होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता, बनाना पड़े तब तो जरूरत है रसोई की। तो देवता कहीं भोजन बनाते नहीं है, बनता ही नहीं उनके लिए, वहां कोई रसोईया महाराज नहीं है वहां। क्यों नहीं जरूरत है, खाते नहीं है क्या, खाते हैं, लेकिन उनके लिए भोजन बनता है यहीं पर। जो यज्ञादि होते हैं तो देवताओं की अलग अलग जो हवि हैं वे हवि उनका भोजन है, और आप यज्ञ करते हैं तब तक देवता के उद्देश्य से एक प्रकार से वो जो यज्ञ में प्रदान करने के लिए हवन सामग्री लाते हैं ना, वो देवताओं का भोजन है। और सब यज्ञ में एक ही सामग्री नहीं हुआ करती, सब देवताओं की अलग अलग हवि होती है। तो जो यज्ञ कर रहे हैं उस देवता का जो प्रिय भोजन होगा वही उस हवि के रूप में दिया जाता है, और वो बनाया अपने और पैक करके जैसे डिब्बा पहुंचाने वाले हैं कहते मुंबई में ऐसे कोई कहीं होता है ना, तो फिर वो जिसने जिसने ऑर्डर दिया हुआ है जैसा जैसा वो डिब्बा पहुंचाते हैं ना डिब्बा, ऐसे वन्ही है देवताओं का डिब्बा पहुंचाने वाला, बना करके आप पैक करके दे देते हैं हवन सामग्री मंत्र उच्चार के साथ। जब आवनीय अग्नि में डालते हो तो आवनीय अग्नि वो देवताओं को आपके द्वारा दिया गया जो भोजन है वो पहुंचाता है। तो वन्ही शब्द का अर्थ होता है पहुंचाने वाला, प्रापक, वह प्रापणे धातु है, उसी से फिर वन्ही शब्द बनता है तो अर्थ निकलता है प्राप्त कराने वाला। आपने यहां से दिया अग्नि के पास और अग्नि ने आंख से तो दिखेगा वो सारी सामग्री जल करके राख हुई, लेकिन उसका जो सूक्ष्म रूप है अग्नि उस देवता तक पहुंचा देता है, और देवता उसी को खा करके हृष्ट पुष्ट होता है। तो इसलिए कहा गया कि देवानाम त्वम वन्नीतमः असि, तो वन्नी कहने से ही हो जाता, तम शब्द का प्रयोग किया है, ये तम एक प्रत्यय होता है। तो देवताओं तक आपके द्वारा प्रदान की गई भेंट देवताओं को पहुंचाने वाले अनेक हैं, लेकिन उसमें जो सर्वश्रेष्ठ हैं पहुंचाने वाले में उसे कहा जाता है वन्नीतम, तम प्रत्यय होता है। गुड, बेटर, बेस्ट, ऐसा जैसे इंग्लिश में कहा जाता है ना, ऐसे ये तम प्रत्यय उसके लिए होता है। वन्नी का अर्थ हुआ प्राप्त कराने वाला, वन्नीतर का अर्थ है दो प्राप्त करा रहे हैं, उन दो में से एक ज्यादा अधिक अच्छा पहुंचाने वाला, और जितने भी पहुंचाने वाले हैं उन सब में सबसे उत्कृष्ट सेवा देने वाला जो है, कुरियर कंपनियां कई एक है, लेकिन कोई कोई कंपनी अच्छी सेवा देती है तो उसको आप पसंद करते हैं। तो ऐसे ही ये देवताओं को आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली भेंट पहुंचाने वाले कई हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ यदि कोई है, पूर्ण विश्वास पात्र, इसमें क्या पैक किया है खोल करके देखा जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करता, जो पूर्ण जैसी पैकिंग आपने की ऐसी ही पहुंचा देता और समय पर पहुंचा देता है, वो है अग्नि। वो और उसे कहा गया कि आप ही, और वो अग्नि भी किसका रूप है, प्राण का ही, इसलिए देवानाम त्वम वन्नीतमः असी, तम प्रत्यय कर दिया। और पितृणाम प्रथमा स्वधा, तो जो पितर होते हैं, देवता अलग है इंद्रादि और पितर अलग है आर्यमादि, तो ये जो पितरों को जो आप अन्न देते हैं उसका नाम है शास्त्र में स्वधा, देवताओं को जो अन्न देते हैं उसका नाम है हवि, अलग अलग नाम है पितरों के भोज्य पदार्थों को स्वधा कहा जाता है, देवताओं के भोज्य पदार्थों को कहा जाएगा हवि। तो हवि का प्रापक वन्ही रूप धारण करके कौन है, ये प्राण ही है, जैसे ऐसे ये प्राण ही पितरों को जो आप नांदी श्राद्धादि करते हैं, जो भी वैदिक कार्य किया जाता है उसमें हवन तो बाद में शुरू होता है, और हवन में फिर तत्त्व देवता के उद्देश्य से हवि दी जाती है, उससे पहले आपको कोई भी यज्ञ करो तो पितरों को तृप्त करना होता है, पितरों का आशीर्वाद लेना होता है, उसके लिए फिर पितरों को तृप्त करना है तो भोजन आदि कराना पड़ेगा ना, तो भोजन पितरों का जो है भोज्य पदार्थ वो है स्वधा, और वो हवि की अपेक्षा पहले बनाना होता है, ये नहीं कि हवि पहले बना करके तो ठंडा हो जाएगा ना, गरम गरम भी देना है भोजन, तो पहले नांदी श्राद्ध करना है, तो नांदी श्राद्ध में जो सामग्री उपयोग में आती है उसका उपयोग पहले होगा, इसलिए स्वधा का विशेषण है प्रथमा। स्वधा यानी पितरों को आपके द्वारा दिया जाने वाला अन्न, वो स्वधा, और उसमें प्रथमत्व क्या है, तो देवताओं के आपके द्वारा दिए जाने वाले भोजन की अपेक्षा प्रथमत्व, पहले पितरों को भोजन कराओगे फिर देवताओं को। नांदी श्राद्ध करेंगे का अर्थ है आप पितरों को भोजन करा रहे हैं, पितरों को तृप्त कर रहे हैं, और वो पहुंचाएगा कौन, तो उसको भी पहुंचाने वाला प्राण ही है, तो इसलिए ये कहा कि पितृणाम प्रथमा स्वधा या तस्यापि वन्नीतमः त्वमासि, ऐसा लगाना, उसके भी प्रापक आप ही हैं। और ऋषीणाम चरितम सत्यम अथर्वांगी रसाम अपि असि, तो यहां ऋषि शब्द का अर्थ है इंद्रिया, चक्षुरादि इंद्रिया, इनको ऋषि कहा जा रहा है, इसलिए कि ऋष धातु है गत्यर्थक, और गत्यर्थक ऋषि धातु से ऋषि शब्द बना है, ऋष धातु से उसका अर्थ ज्ञान भी होता है, जो भी गत्यर्थक धातु होगा उसके तीन अर्थ निकलते हैं, गति भी, ज्ञान भी और प्राप्ति भी, तो यहां पर ज्ञान अर्थ लेना चक्षुरादि इंद्रिया। और ये जो इंद्रिया है ऋषि शब्द का अर्थभूत, इनके विशेषण है अथर्वांगी रसाम, अथर्वांगी रसाम ऋषि नाम। एक ऋषि शब्द होता है रूढ़, जो मंत्र के दृष्टा होते हैं उनको भी ऋषि कहा जाता है, लेकिन यहां वे ऋषि नहीं जिन्होंने समाधि अवस्था में वैदिक मंत्रों का दर्शन किया, वे भी ऋषि शब्द का अर्थ होता है। ऋषयो मंत्र दृष्टार इस वाक्य के अनुसार, लेकिन यहां ऋषि शब्द का अर्थ इंद्रिया है। भाष्य में शंकराचार्य जी महाराज ने ऋषि शब्द का अर्थ इंद्रिया ही कर दिया है, और उपनिषदों का अर्थ समझने के लिए जितना प्रामाणिक श्रद्धे शंकर भाष्य है उपनिषद मंत्रों का अर्थ समझने के लिए, उतना तो अन्य नहीं ना, क्योंकि एक सर्वज्ञात मुनि नाम के बड़े विद्वान हुए, सर्वज्ञात मुनि संक्षिप्त शारीरक नाम का एक ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र का, वो उसमें श्लोकबद्ध व्याख्यान है संक्षिप्त शारीरक में, और उसके रचयिता हैं सर्वज्ञात मुनि, वे हैं सुरेश्वराचार्य जी के शिष्य। तो वो मंगलाचरण में कहते हैं कि वक्तार मासाद्य एवमेव नित्या सरस्वती स्वार्थ समन्वितासित निरस्त दुस्तर्क कलंक पंका नमामितम शंकर मर्चितांघ्रिम का, यानी इसमें वे कहते हैं नित्या सरस्वती एक नाम है वेद का, नित्या सरस्वती यानी वेद, और वेद से लेना यहां पर वेदों का ज्ञान कांड जिस पर शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है, वो ज्ञान कांड वेद का वो है नित्या सरस्वती उपनिषद, और वो उपनिषद स्वार्थ समन्विता असीत, यानी उसको जो अभिप्रेत अर्थ है उपनिषदों का, जो मुख्य अर्थ है अभिप्रेत अर्थ है, वही मुख्य अर्थ अभिप्रेत अर्थ से युक्त उपनिषदें हुई, लेकिन कब कहते यम वक्तारम आसाद्य, जिस वक्ता को प्राप्त करके उपनिषदों को, जो उनको अपना अर्थ अभिप्रेत था वही अर्थ प्राप्त हुआ, सामने आया उपनिषदों का जगत के, उपनिषद वक्ता यानी व्याख्याता, तो उपनिषद के जिस व्याख्याता को प्राप्त करने के बाद उपनिषदों को अपना जो अर्थ अपेक्षित था वही अर्थ उपनिषद अध्येताओं के सामने आया, जिस व्याख्याता को उपनिषदों ने प्राप्त किया उसके बाद आया, वह व्याख्याता है शंकराचार्य जी, उनके चरण कमलों को हम नमस्कार करते हैं, ऐसा उन्होंने मंगलाचरण किया है। तो सर्वज्ञात मुनि जैसे विद्वान कहते हैं कि उपनिषदों का मुख्यार्थ जो अभिप्रेत है उनको वो समझना है, तो शंकर भाष्य के माध्यम से समझा जा सकता है, और शंकराचार्य जी ने शंकर भाष्य में यहां पर ऋषि शब्द का अर्थ कर दिया इंद्रिया, और इंद्रियों का ही विशेषण है अथर्वांगी रसाम। वे इंद्रिय कैसी हैं तो अथर्वांगी रस है, अंगी रस का, अंगी रस में अंगी शब्द का कहा जाता है, अंग कहते हैं शरीर के एक एक अवयव को, अंग कहा जाता है, और अंगी कहा जाएगा शरीर को अवयवी को, तो हस्त पादादि अंग हैं जिसके वह देह हुआ अंगी, अंगी रस शब्द में, और उस अंगी का यानी शरीर का जो रस के तरह रस है, रस कहा जाता है सार को। तो इस शरीर में जब तक ये कार्य स्थूल शरीर के अंदर इंद्रियां हैं और इंद्रियों के साथ प्राण है, तभी तक यह शरीर सरस माना जाता है, रसयुक्त माना जाता है। और ये निकल जाए इंद्रियां वगैरह सब, तो ये नीरस हो जाता है। फिर इसलिए अंगी का यानी शरीर का जो रस है वो कौन है, जिसके शरीर में रहने से शरीर सरस हो, उसे कहा जाएगा अंगी रस। तो इंद्रियों के शरीर में रहने से शरीर सरस होता है, रस युक्त होता है, इसलिए शरीर का रस माना जाता है इंद्रियों को। तो अंगी रसाम का अर्थ है शरीर के रसभूत, रसरूप वो कौन है, ऋषि शब्दित इंद्रिया, ये शरीर के रसभूत हैं। और वे ही अथर्वा भी हैं। अथर्वा कहा जाता है पुष्ट करने वाले को, अथर्वा शब्द का अर्थ होता है संपोषक। तो इस शरीर को पुष्ट रखते हैं, परिपुष्ट रखते हैं कौन, इंद्रिया ही, इस शरीर में रह करके वो उसका सार भी है और शरीर का संपोषण भी करते हैं। इसलिए ऋषि शब्दित इंद्रिया अथर्वा है और अंगीरस है। तो ये जो अथर्वा अंगीरस रूप इंद्रिया है उनका सत्यम चरितम, चरितम का अर्थ होता है प्रवृत्ति, आचरण, व्यापार, क्रियाएं, ये है इंद्रियों का चरित। वो दो प्रकार का, एक असत्य चरित और एक सत्य चरित। तो सत्य चरित है जिससे शरीर धारण ठीक से हो जाए, आयु शरीर निरोग रहे, शरीर लंबे समय तक चले, ऐसी इंद्रियों की प्रवृत्तियों को कहा जाता है सत्य चरित। और जिससे जिन इंद्रियों की प्रवृत्तियों से शरीर में अनेकों प्रकार के रोग आ जाए, धूम्रपान आदि हैं, मदिरापान आदि हैं, निषिद्ध आचरण है, निषिद्ध भोजन है, इन सब के भक्षण आदि से शरीर में अनेकों प्रकार के रोग होते हैं, वो है इंद्रियों का असत्य चरित। और सत्य चरित है इंद्रियों का वो शरीर धारणादि रूप, जिससे शरीर निरामय रहे यानी स्वस्थ रहे और लंबे समय तक अच्छी तरह से कार्यरत रहे, अंतिम तक पराधीन न हो सके, ऐसी इंद्रियों की प्रवृत्ति का नाम है ऋषि नाम सत्यम चरितम। और ये जो ऋषियों का इंद्रियों का सत्य चरित है वो भी कौन है, यदि प्राण न रहे तो प्राण मुख्य है इनमें, वागादि इंद्रिया ये कह रही है स्वयं कि हमारे अंदर जो ये सत्य चरित है वो आपके निमित्त से है, इसलिए आपका ही है, आप ही हैं। आप न हो तो हम ये सब नहीं कर सकते, इसलिए हमारी प्रवृत्ति आपके अधीन है, आप हमारे प्रवर्तक हैं, नियामक हैं। ये एक प्रकार से इन इंद्रियों के द्वारा स्तुति की जा रही है मुख्य प्राण की। नवम मंत्र है इंद्रस्त्वं प्राण तेजसा रुद्रोसी परिरक्षिता त्वम अंतरिक्षे चरसी सूर्य त्वम ज्योतिषाम पति ही। तो हे प्राण संबोधन है वागादि इंद्रियों के द्वारा मुख्य प्राण के लिए किया गया कि त्वम इंद्रोसी आप इंद्र हो। तो इंद्र शब्द का अर्थ होता है देवराज, लेकिन यहां देवराज अर्थ नहीं है। जैसे ऋषि शब्द का प्रसिद्ध अर्थ होता है मंत्र दृष्टा ऋषि, लेकिन यहां लिया गया इंद्रिय अर्थ। ऐसे यहां इंद्र शब्द का प्रसिद्ध जो अर्थ है देवराज, वो न लेकर के यहां इंद्र शब्द का अर्थ है परमेश्वर। देवराज क्यों नहीं लिया जा रहा है, प्रसिद्ध अर्थ को क्यों छोड़ रहे हैं? तो इसलिए छोड़ा जा रहा है कि पहले मघवान एक शब्द आया और मघवान का अर्थ भी इंद्र होता है, देवराज होता है। तो मघवान शब्द से पहले यहां पर इंद्र की चर्चा हो चुकी है, इंद्र रूप बता दिया गया है प्राण को। और फिर इंद्र शब्द से भी देवराज इंद्र को ही लेंगे और फिर कहा जाएगा कि देवराज इंद्र भी आप हो, तो पुनरुक्ति हो जाएगी ना। पहले भी भगवान शब्द से कहा कि आप ही देवराज इंद्र हो, वो इंद्र बन करके पालन करते हो प्रजा का, और यहां पर भी आप ही इंद्र बन करके पालन कर रहे हो कहेंगे, तो दोबारा कहने से पुनरुक्ति दोष होगा। इस पुनरुक्ति और वेद तो निर्दोष है ना, वेद में कोई दोष हो नहीं सकता। इसलिए भाष्कर भगवान कहते हैं इंद्र शब्द का यहां अर्थ है परमेश्वर, और आप ही परमेश्वर हो। हे प्राण त्वम इंद्रोसी यानी परमेश्वरो असी। तो ईश्वर कहते हैं शासक को, नियामक को। तो आप ही सारे संसार के नियामक हो, स्थूल जगत के। सूत्रात्मा है ना, समष्टि प्राण है, और ये समष्टि प्राण ही सारे जगत को आश्रय दे करके सारे जगत को अपने नियमन में रखता है, इसलिए परमेश्वर है, नियामक है। और आगे कहा कि त्वम तेजसा रुद्रो असी। तो आप ही रुद्र भी हो। रुद्र का कार्य है संहार। तो जब जगत का संहार काल आता है, प्रलय काल आता है, उस समय आप ही इस जगत को अपने तेज से संहरित करते हो, रुद्र रूप धारण करके, जो व्यवहार में कहा जाता है पौराणिकों के द्वारा कि संहार की देवता रुद्र हैं, वह रुद्र आप ही हैं। संहार काल में अपने तेज से इस सारे सृष्टि को अपने में समा लेते हो, और स्थिति काल में परिरक्षिता विष्णु रूप से आप ही इस जगत के रक्षिता भी हो। का मतलब इसी प्राण के ये विष्णु रुद्र जो पुराण में है एक विभूति विशेष है। जैसे भगवान कृष्ण ने अपनी विभूति विशेष 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 बताया गंगादि पदार्थों को, ऐसे पुराण के रुद्र और ये विष्णु, ये इस मुख्य प्राण जो सूत्रात्मा है वैदिक, उनका एक अंश है, एक रूप है, विभूति जैसी है। स्थिति काल में विष्णु रूप धारण करके आप ही जगत की स्थिति कर रहे हो, संहार काल में आप ही रुद्र रूप धारण करके जगत का संहार कर रहे हो, और सूर्य रूप धारण करके सारे जगत का जो ये दिन रात को अलग अलग व्यवहार होता है, इस व्यवहार का पहले दिन और रात्रि ये जो दो विभाग होते हैं, इन विभागों का निमित्त क्या है? सूर्योदय और सूर्यास्त को लेकर के ही दिन रात होते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच वाला जो समय है दिन कहलाता है, सूर्यास्त के बाद सूर्योदय के बीच वाला समय रात कहलाता है। और ये दिन में होने वाला जो संसार का व्यवहार और रात्रि में होने वाला जो संसार का व्यवहार, इस व्यवहार का निर्वर्तन जब दिन और रात ये दो विभाग हो पहले समय के, तब इन अलग अलग समय में होने वाले व्यवहार निष्पन्न हो। और ये दिन रात का निष्पादन निष्पादक है सूर्य का उदय अस्त, और उदय अस्त के लिए आप अंतरिक्ष में निरंतर चलते रहते हो, विचरण करते रहते हो, ऐसा ये वागादि कह रहे हैं कि अंतरिक्षे यानी आकाशे त्वम चरसी यानी बिना विश्राम के निरंतर चलते जा रहे हो। उदय होने के बाद अस्त होने के लिए और अस्त के बाद फिर उदित होने के लिए कभी विश्रांति नहीं लेते हो, सूर्य बनकर के निरंतर आकाश में गति करते रहते हो। और ये सब किस लिए है? कि लोक व्यवहार की उपपत्ति के लिए, सिद्धि के लिए। का मतलब आपका जो भी कार्य है वह लोकोपकारार्थ है, आप लोकोपकारी हैं, ये यहां पर बताया जा रहा है। जिससे जिससे लोगों का उपकार हो वह वह रूप धारण करके तद तद उपकार आप ही कर रहे हो सारे लोगों पर। दसवें मंत्र में कहते हैं कि सबको सुख होता है जब उपभोग की सामग्री पर्याप्त मिल जाए, मिलने की संभावना दिखे, तो पहले से ही आनंद होता है। तो इसलिए फिर जीवन चलाने के लिए आवश्यक सामग्री है भोजन की सामग्री पहले, बाकी सुख सुविधाएं तो बाद में। और अन्न की उपलब्धि होती है वर्षा से, इसलिए वर्षा यदि ठीक हो जाए तो कहा जाता है कि अब पैदावार भी अच्छी होगी, फसल अच्छी आएगी, ये लोग कहते हैं। तो दसवें मंत्र में यही कहा जा रहा है कि लोक जिससे खुश होते हैं, अधिक ठीक पर्याप्त वर्षा हो जाए तो वर्षा का रूप भी बरसने वाले पर्जन्य का रूप धारण करके भी आप ही वह उपकार भी कर रहे हैं लोगों पर। ये दसवें मंत्र में बताया जा रहा है कि यदा त्वम अभिवर्षसी अथे माह प्राणते प्रजा आनंद रूपा तिष्ठन्ती कामाय अन्नम भविष्यति इति। तो हे प्राण, यहां पर भी संबोधन है प्राणते, ये अलग अलग दो पद हैं प्राण और ते। तो हे प्राण, यदा त्वम अभिवर्षसि, पर्जन्य बन करके जब आप अभिवर्षण रूप व्यापार करते हो, जितनी वर्षा चाहिए बारिश चाहिए उतने बरसते हो, तो उस समय फिर ते प्रजा, ते इमाह प्रजा, ऐसा लगाना, आपकी, ते का अर्थ है आपकी और इमा प्रजा, ये जो हम लोग प्रजा है वो किसकी प्रजा है? प्राण की। प्राण तो प्रजापति है ना, और हम हैं प्रजा, और हमारे पति यानी स्वामी परिरक्षक वो है प्राण सूत्रात्मा। ये पूरे ब्रह्मांड का अधिपति है सूत्रात्मा, संरक्षक है। और यही पर्जन्य बन करके जब खूब बरसते हैं और वर्षा पर्याप्त देखते हैं तो लोग आनंदित हो जाते हैं। क्यों आनंदित होते हैं? तो कहते हैं कामाय अन्नम भविष्यति इति, उनके आनंद मनाने का, उत्साहित होने का निमित्त बताया जा रहा है कि इस वर्ष बारिश अच्छी हुई तो पर्याप्त अन्न होगा, कहीं भूखा रहने की आवश्यकता नहीं होगी, भूखमारी सताएगी नहीं। ये निश्चय करके वो सुखी हो जाती है, प्रजा आनंद मनाती, आनंद उत्सव मनाती है। तो प्रजा के आनंद उत्सव का निमित्त भी जो अभिवर्षण है वो अभिवर्षण रूप व्यापार करने वाले पर्जन्य बन करके वह उपकार भी आप ही करते हो। और आगे कहते हैं ग्यारहवें मंत्र में कि व्रात्यस्त्वं प्राणैकऋषि अत्ता विश्वस्य सत्पति ही वयम आद्यस्य दातारः पिता त्वं मातरिस्वनः। तो यहां पर भी प्राण और एकर्षि ऐसा अलग अलग निकालना, हे प्राण संबोधन है कि हे प्राण आप व्रात्य हो, तुम यानी आप और व्रात्य हो। जैसे पहले कहा कि प्रजापति स्तम का अर्थ है कि आप प्रजापति हो, इंद्रस्तम का अर्थ है आप परमेश्वर हो, ऐसे यहां पर कहा जा रहा है कि आप व्रात्य हो। तो व्रात्य शब्द का अर्थ होता है संस्कारहीन, जिसका संस्कार नहीं होता उसे कहा जाता है व्रात्य। तो आप संस्कारहीन हो। क्यों संस्कारहीन हो? तो कहते हैं इसलिए कि प्राण ही तो सबसे पहले उत्पन्न होता है ना, ज्येष्ठ है ना, तो संस्कार करने के लिए पहले माता पिता संस्कार करते हैं बच्चे के, तो प्राण तो ज्येष्ठ है सब में, तो उसका संस्कार कौन करेगा? तो इसलिए कहते हैं कि कोई संस्कार करने वाला न होने से आप संस्कारहीन हो। तो अभिप्राय है संस्कार करने की आवश्यकता किसके होती है? जो अशुद्ध है उसका अशुद्धि निवारण रूप संस्कार किया जाता है, गुणाधान रूप संस्कार किया जाता है, जो संस्कार योग्य होगा। तो संस्कार योग्य दो होता है, जिसमें कोई गुण नहीं है तो उसमें ऊपर से गुण प्रदान किए जाते हैं, तो गुणाधान रूप संस्कार हुआ। और दोष है तो दोषापनयन रूप संस्कार हुआ। तो माना जाता है ये संस्कार दो प्रकार का। तो आप तो निर्दोष हो इसलिए दोषापनयन रूप संस्कार आपका हो नहीं सकता, और गुण तो आपके अंदर स्वाभाविक है इसलिए गुणाधान रूप संस्कार भी आपका हो नहीं सकता, दोनों प्रकार का संस्कार नहीं हो सकता। इसलिए यहां व्रात्य कहा जा रहा है। व्रात्य कहने का अर्थ अभिप्राय तात्पर्य अर्थ भाष्कर भगवान ने निकाला कि आप स्वभावतः शुद्ध हो, आपके अंदर स्वाभाविक शुद्धि तथा दोष राहित्य है। ये व्रात्यस्त्वम प्राण इतने का अर्थ निकलेगा, हे प्राण आप स्वभावतः शुद्ध हो। बाकी एकर्षि इत्यादि पदों की चर्चा हम लोग कल करते हैं। हरिओम।